श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की। तो उन्होंने चारों तरफ विश्व में प्रचार किया। फिजी में दो बार शायद आए थे,
दो बार
आप लोगों के वजह से ही आए, आप लोगों ने बुलाया उनको और फिर हमको भी आप लोगों ने बुलाया। स्वामी महाराज ने हमको प्रेरणा दी। आप लोगों को देखते ही स्वामी जी का स्मरण होता है, फिर वैसे ही धूमधाम से प्रचार होगा जैसे उनके समय में हुआ था। यद्यपि इस कोण वाले बाधा देने की चेष्टा करते हैं किंतु कुछ नहीं कर पाए। मैं उनकी सहायता करने के लिए आया, जो उनकी सहायता करूं जो वो लोग ऊपर उठें और उनका प्रचार ठीक रहे। किंतु नहीं समझ, उल्टा समझ रहे हैं, उल्टा बुझ ली रहा, उल्टा समझ लिया। आई वॉन्टेड टू कम, आई हैव कम ओनली एवरीवेयर इन वर्ल्ड टू हेल्प देम इस कॉम टू गॉड। बट एनी हाउ दे आर प्रीचिंग फॉर मी एंड हेल्पिंग मी। इफ दे आर प्रीचिंग अगेंस्ट बट इट कम्स इन माई फेवर, सो आई एम ऑलवेज देयर फ्रेंड्स, ऑलवेज आई वॉन्ट टू हेल्प देम। सो यहाँ पर बहुत अच्छी कथाएं होंगी। आज हम लोग 3-4 घंटा प्लेन से आए हैं, इसलिए अभी विश्राम करेंगे। शाम को यदि हरी कथा होगी तो उसमें हम लोग बोलेंगे। और आप लोग प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम विद काम इंडिया एंड ऑल ऑर्डर्स।
नमो महाभगन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरवस्तुते। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय परमभक्ताय।
लाल पूजा जी, उनके बड़े भैया और जगन्नाथ इत्यादि सभी बड़े आग्रह से बुलाया। मुझे ऐसे मालूम पड़ता है ये मिनी इंडिया है, छोटी सी, छोटा भारत है और अपना घर है। बड़े प्रेम से ये लोग बुलाते हैं, इसलिए वृंदावन जैसे धाम को, मथुर धाम को, जहाँ पर कृष्ण की लीलाएं हुई, जहाँ उनके सब कुंज हैं, हिरणे कुदरती हैं, मोर नाचते हैं, यहाँ सब समय षड ऋतु यहाँ पर विराजमान होती है, जो सिद्ध भूमि है। वो लोग वृंदावन में, उस वृंदावन में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ तक लिखा है कि यदि तुम शरीर से वास नहीं कर सकते वृंदावन में, तो मन ही मन में भी वास करो और बतलाओ मैं उस वृंदावन को छोड़ करके इधर उधर भटक रहा हूँ, इसलिए भटक रहा हूँ। कोई प्यारी वृंदावन को छोड़ा चाहता है तो इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, तो ऐसा ही मालूम होता है कि ये भी यहाँ के पर्वत सब हैं, यहाँ के छोटे छोटे वन है बड़े सुंदर सुंदर चारों तरफ में, वहाँ पर तीन तरफ यमुना है, यहाँ पर चारों तरफ में यमुना है, यहाँ पर भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब लोग भक्त हैं और प्रेम से बुलाते हैं भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। इसलिए वृंदावन छोड़ करके धाम छोड़ करके भी मैं यहाँ आ जाता हूँ। यह सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है कि इसी घर में इसी जगह जहाँ पर मैं बैठा हूँ एक पूंजा ब्रदर्स के आग्रह से हमारे परम पूज्य शिक्षा गुरु श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, एक बार नहीं दो दो बार। और इन लोगों का आग्रह देकर के उनकी इच्छा हुई कि यहाँ पर भी एक आश्रम हो और इसके अनुसार में पूंजा ब्रदर्स ने अपना बहुत कुछ त्याग करके यहाँ पर मंदिर बनाया। इसको रमणीक दीघ भी इसको लोग कुछ लोग मानते हैं, रमणीक दीघ न रमणीक दीघ काली अपने बच्चों के साथ में अपनी पत्नियों के साथ में यहाँ पर आकर के निवास किया कृष्ण के आदेश से। स्मृति भी इसमें लगी हुई है, स्वामी जी को यहाँ पर बहुत आदर दिया और यहाँ पर एक आश्रम भी उनकी इच्छा से हमारे कांति जी के बड़े भैया
गौरमोहन जी
ये और वासुदेव उन लोगों ने बहुत सेवा की, हमारे गौरमोहन जी पहले से एकदम, और उनकी पत्नी परम विदुषी और परम भक्त हैं। जब आप लोग इनके कीर्तन को सुनेंगे, इनकी वाणी को सुनेंगे तो देखेंगे ये कैसी है। मुझे इनसे बहुत ही स्नेह है तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर हमारे तीन चार प्रोग्राम हैं, यहाँ है पास ही में सुबह में भी है और सब जगहों में है। यहाँ पर हम लोग चेष्टा करेंगे भागवत कम से कम तो 12 दिन हो और सवेरे 3 घंटा शाम को 3 घंटा 6 घंटा डेली और 7 दिन कंटिन्यूअस हो तो उसका कुछ अंश हम लोग कर सकते हैं। कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक सुने कृष्ण की लीला कथाओं को तो कृष्ण क्या करते हैं उसके हृदय में कानों के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके उसके हृदय को निर्मल कर देते हैं और निर्मल करके उसमें सभा के लिए बैठ जाते हैं। अपनी भक्ति उन्नत उज्ज्वल रस की भक्ति तक को भी जिसके अधीन कृष्ण हो जाते हैं ऐसी भक्ति को ही प्रदान करते हैं। उसके हृदय की सारी ग्रंथियां मिट जाती हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि उसके सारे संदेह मिट जाते हैं। All doubts go away and all his nuts of life of quickly and God. So powerful is Hari Katha. Hari Bhagwan ki katha hai, aise hi powerful hai. But जो लोग ज्ञान बूझ करके भी इन हरि कथाओं का आदर नहीं करते और इन हरि कथाओं के नाम पर पैसा लूटते हैं और गुरु वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं वो बहुत भारी अपराधी हो जाते, उनके हृदय में भगवान नहीं आते। किंतु जो सत्य होकर के निष्कपट होकर के इन कथाओं का आदर करते हैं कृष्ण जरूर उसके कानों में प्रवेश कर जाते। हम लोग करोड़ों जन्मों से भगवान को भूलकर अपनी आत्मा को भूलकर इस संसार में घूम गए और समझ रहे हैं कि हम सुखी हैं। आप जितने सुखी हैं उससे कुत्ते ये समझते हैं कि हम इनसे बहुत सुखी हैं, और इनसे भी जो सुअर है गंदे नाली में रहती है, एक साथ में 16-18 बच्चे को पैदा करती है, लड़के लड़के की संतान की शादी के लिए कोई चिंता नहीं है, उनको सवेरे से शाम तक अपने बिजनेस में नहीं जाना पड़ता पैसा कमाने के लिए, वो सुअर कहती है कि हम इनसे लाखों गुण सुखी हैं, ये किस लिए सुखी हैं? ऐसे ही हम लाखों जन्मों से घूम रहे हैं भगवान को भूल करके, इस चीज को मत भूलो। हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी ऐसा कहते हैं, हम ही नहीं कहते, हमारी गुरु परंपराएं कहती हैं, वेद कहते हैं, वेद ऑथेंटिक बुक ये कहते हैं। इवन पर भरोसा करके, माँ पर भरोसा नहीं कि भी कर सकते हैं, sometimes we can rely on, have some belief on mother, but she can speak something long, that you are son of this, not son of this. But Ved Puran and Srimad Bhagavatam, they cannot tell long, never. They are more than father and mother and parents, so merciful, because they are actually Krishna. No difference between Krishna and Ved Shastra. Krishna has himself become Ved Upanishad Srimad Bhagavatam. More merciful than Krishna. When our all kinds of doubts, unwanted things will go away, and all kinds of offenses will go away, and after so much sadhan, less and less, but Krishna may give a glimpse of darshan. Kabhi Krishna darshan de sakte hain, bina aparadh durve nahi denge, kintu ye bhagavat rupi jo bhagwan hai, Krishna hai, ye sab ke yahan mil sakte hain, usko padh sakte hain hum, uske dwara Krishna ka darshan kar sakte hain, isliye Krishna bade dayalu hain. इस जन्म को मत खो, डोंट लॉस दिस ह्यूमन लाइफ, नेवर, आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी एनीवन कैन नॉट से, कोई नहीं कर सकता, इस जीवन के बाद में सुकर कुकर गधे होगे क्या होगे कोई ठीक नहीं, एस्पेशली the persons in Western countries, they don't like God. They like dogs. So they must be dogs. जो लोग कुत्तों को प्यार करते हैं, अंत में क्या होगा? वो कुत्ते होंगे। क्योंकि उसी की चिंता आएगी, और फिर वो भगवान का भजन करेंगे, ना साधु संग करेंगे, ना आत्मा का रियलाइजेशन कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए निधे हमारम सुलभम सुदुर्लभम लौम सुखम परम गुरु कर धार मैं अनुकुलीन नमस्वतेरितम पुमान भवाप्तिम न तरिष आत्मा। इस चीज को आप लोग याद रखें, मनुष्य जन्म पाया और बहुत ही सुंदर सुकांत शरीर पाया, जवानी है, शरीर की इंद्रियां सब ठीक हैं, आंख है, कान नाक सब है, और गुरु भी मिल गए भगवान की कृपा से, साधु संग भी मिल गया, और इतना पाकर के भी जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, आत्मा का अनुभूति नहीं हुई, उनका जन्म बेकार है, और उनसे भी बेकार उन लोगों का जन्म है जिनको साधु संग मिल गया, हरि कथा सुन रहे हैं, गुरु भी मिल गए, फिर भी उच्च कोटि के साधु संतों का संग नहीं कर सके, उनका जीवन और बेकार है सब कुछ होकर। इसे मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य गधे घोड़े और कुकर सुकर के जैसे जीवन को निर्वाह करके पुत्र पैदा करना ही नहीं है, उनका पालन पोषण करना नहीं है, बल्कि उनको भगवान की भक्ति पर यदि ला सको तो तुम्हारा जीवन और पुत्रों का पालन पोषण सार्थक है। पुत्र उत्पन्न करना ये बड़ी भारी बात नहीं है, ये कर सकते हैं, किंतु उसको आत्मा की अनुभूति हो सके, भगवान की अनुभूति हो सके, भगवत भक्ति हो सके, भगवान में प्रेम हो सके, ऐसा यदि कर सको तब तो तुम्हारा पिता होना सार्थक है, माता होना सार्थक है, तुमको पति होना सार्थक है, पत्नी होना सार्थक है। यदि भगवान की अनुभूति नहीं है, जो विश्व की रचना करता है, क्षण मात्र में विश्व की रचना कर देगा, क्षण मात्र में विश्व का संहार कर देगा, और बड़ा कृपालु है, उसका भजन नहीं किया तो धिक्कार है हमारे जन्म को। इसलिए हम लोगों को भगवान का जरूर भजन करना। एक बात समझिए इस चीज को, एक आदमी बहुत धनी है, बहुत धनी है, और वो जो नौजवान है, बहुत सुंदर सुकांत है, उसके शरीर बड़े सुंदर है, इंद्रियां बड़ी तेज है, बहुत बुद्धिमान है, और उसकी पत्नी भी बड़ी सुंदर और बुद्धिमती है, और उसके लड़के भी हैं, चार लड़के हैं, एक या दो लड़की है, वो भी सुंदर है, लड़कियों की अच्छी जगह में शादी हो गई, लड़कों की या शादी हो गई, उनके नाती भी हो गए, बड़े सुंदर से उनका सब कुछ चल रहा है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, उनको भगवत भजन करने की क्या जरूरत है, वो अपने जीवन में सुखी तो है ही है, तो उनको क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की। पुंडरीक जी 5 मिनट इसके संबंध में बोलिए।
रहने के लिए जिन आवश्यक चीजों की जरूरत होती है उनके पास बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, किसी प्रकार की परेशानी या चिंता नहीं है। इसलिए ऐसे लोग सोचते हैं कि हमें भजन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन यदि हम बहुत ध्यान से विचार करें इस बात पर तो यह पाएंगे कि उनका जो सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है, सुख की प्रतीति है, लगता है कि सुख है। जैसे गुरु महाराज जी ने भी स्वयं ही बताया कि हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, अर्थात क्या ये सुख ठीक वैसे ही है जैसे इस घर के अंदर हम बैठे हैं, और इससे भी अधिक और ऐसे से वैभवशाली घर हैं जहां पर बटन दबाने से समस्त प्रकार की चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, और भी बहुत प्रकार का वैभव है। किंतु उस घर के चारों ओर बाहर में यदि आग लगी हो तो उस घर के अंदर बैठ करके हम जिस सुख को उपभोग कर रहे हैं उस सुख की वास्तविकता कितनी रह जाती है, उस सुख की वास्तविकता कितनी रह जाती है। इसलिए यदि हम और भी गौर करें तो देखेंगे नो मैटर हाउ एवर ब्यूटीफुल वी आर, we may be very powerful, but because we have this material body, so we are bound to suffer certain inevitable miseries of this world. We must feel hungry. 3 times a day, we want to eat food. Any strong person of the world cannot say that he can live without food. They feel thirsty. They must take water, pure water. They cannot live without water. They must breathe some pure air. They cannot surpass the laws of material nature. They cannot. और यदि एक चीज और देखें कि सभी में भोग करने की प्रचुर कामना है, कि जितने भी लोग हैं सभी में, छोटे से बच्चे में भी, जब छवि में भोग करने की इच्छा इतनी प्रबल है और जिस प्रकार से उनका शरीर विकसित होता है, ये भोग करने की इच्छा वासना और प्रबल होती जाती है, ऐसी अवस्था में कौन किसको सुख प्रदान करेगा? सभी तो शोषण करना चाहते हैं एक दूसरे का। इस स्वार्थता के कारण ऊपर से दिखने वाली मीठी मीठी बातें या जो रिश्ते हम निभाते भी हैं दोस्ती के नाम पर या माँ बेटे भाई बहन के नाम पर, वे सब स्वार्थ पर हैं, निस्वार्थ नहीं है। जब तक इंद्रियों का सुख एक दूसरे से मिलता रहता है तब तक तो हम एक दूसरे के बहुत ही प्यारे हैं। जैसे ही उस सुख में व्याधा या बाधा उत्पन्न होती है, भाई भाई को कत्ल कर देता है। कितने ही उदाहरण हैं शास्त्रों में, इतिहास में भी हम देखते हैं, आज वर्तमान समाज में भी देख रहे हैं। इसी समाज में हमारा ही देश, हमारा ही घर, किंतु उसमें हम सुख से सांस नहीं ले सकते हैं। ईरान इराक, कितने प्रकार के युद्ध हम सुन रहे हैं। सद्दाम हुसैन को लीजिए, बड़ा प्रभावी है, देश का नेता है, कितने लोग उसके नीचे चल रहे हैं, किंतु आज अपने ही देश में चूहे के जैसे बैठ के दुबक करके बैठा हुआ है। तो किस प्रकार की खुशी है ये, किस प्रकार का आनंद है। और इधर शरीर क्रमशः धीरे 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 मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। ग्रेजुअली दिस बॉडी इज एडवांसिंग टुवर्ड्स डेथ। आईज, इयर्स, टीथ, ऑल आवर सेंसेस ग्रेजुअली दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर वीक। सो इन दिस प्राइम एज ऑफ आवर लाइफ व्हेन वन इज यंग वी वर सपोज्ड टू यूटिलाइज this wealth to attain the most precious jewel. What was that? Eternal bliss, eternal happiness. Why it is important? Because throughout our life, from the birth itself, everyone is hankering for happiness. जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के अलावा किसी को जानता नहीं, किसी को भी नहीं जानता। रोएगा तो माँ के पास आकर के चुप होगा और कोई इसको सुख नहीं दे सकता। किंतु जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, अब माँ के पास आता है जब भूख लगेगी या कुछ चाहिए, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएगा? दोस्तों के पास खेलने के लिए, उसे खिलौने चाहिए। अब माँ के अलावा एक और व्यक्ति चाहिए उसे, केवल माँ से उसका गुजारा नहीं होगा। कैसा रिश्ता है, माँ उसके बिना तड़प रही है, किंतु अब उसे माँ की कब याद आएगी, जब उसे कुछ खाने के लिए चाहिए या कुछ चोट लग गई या किसी चीज की जरूरत है, नहीं तो अब माँ की जरूरत नहीं। ऐसे ही बड़े होते 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 आज के समाज में तो देख रहे हैं, युवावस्था आने पे माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं है, समाज के बंधनों की कोई मर्यादा की कोई लाज ही नहीं है। अपने इंद्रिय सुख के प्रति इस प्रकार से हम अंधे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो इस प्रकार के अनाचार और दुराचार को करके क्या कोई व्यक्ति जीवन में सुखी रह सकता है? ये समाज भगवान ने जब बनाया है, इसकी व्यवस्था ठीक वैसे ही की है जैसे हमारा ये शरीर है। ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी मस्ट कॉपरेट इन ऑर्डर टू लिव। इफ हैंड्स, फिंगर्स, आईज, नोज, दे स्टार्ट डिसकॉपरेटिंग विद आवरसेल्फ, देन व्हाट विल हैपन? कैन वी लिव इवन फॉर वन मोमेंट? नॉट पॉसिबल। ऐसे ही पुत्र, पिता, माता, ये सारे शब्दों के अर्थ यदि हम ध्यान से देखें तो इन शब्दों में एक दूसरे के प्रति कर्तव्यता का बोध होता है। और यदि हम अपने उन कर्तव्यों को भूल करके केवल अपने आप को ये शरीर समझ कर ही जीवन निर्वाह करेंगे तो कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, संभव ही नहीं है। और प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा में भी हमें इस बात को और अच्छे से समझने को बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, जिसमें बोलते हैं, क्योंकि उसके पिताजी हिरण्यकशिपु बहुत बड़े असुर हैं, असुरों के राजा हैं। छोटे से बालक, 5 वर्ष का बालक, उसको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा? असुरों के स्कूल में। उस स्कूल में क्या शिक्षा दी जाती है? शाम, दाम, दंड, भेद इत्यादि की नीतियां जो आजकल सिखाई जा रही है। ये नहीं सिखाया जा रहा कि प्रेम कैसे करो, धर्म का आचरण कैसे करो, तुम लोग आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इस तथ्य को प्राप्त करने की चेष्टा करो, इस प्रकार की शिक्षा नहीं है। शिक्षा है कैसे झूठ बोले, कैसे धोखा दे, कैसे अनाचार करें, कैसे दुराचार करें, या किस प्रकार से विध्वंस कर सके, इन चीजों को सिखाया जा रहा है। तो किंतु प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, नारद जी की कृपा से उनके हृदय में उस भगवत
विद्या को पूर्ण रूप से उन्होंने अनुभूति कर रखी है, इसलिए उनको किसी प्रकार से संशय नहीं है। तो जब हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा प्रहलाद महाराज जी से कि बताओ बेटा, इतने दिन से तुम स्कूल में जा रहे हो, तुम्हें क्या शिक्षा सबसे अच्छी लगी? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तत् साधु मन्ये असुर वज्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असत् ग्रहासा हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। बोलते हे असुरराज, अपने पिता को ही संबोधन कर रहे हैं, हे असुरराज। और उसे सुनकर के हिरण्यकश्यप बहुत खुश हो रहा है कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा असुर हूँ। किंतु बेटा बताना चाह रहे, बड़े दुख से बोल रहे पिता को कि हे असुरों के राजा, तुम सुनो कि मैंने क्या सीखा है, सबसे अच्छी शिक्षा क्या है। और बोलते हैं कि ये शिक्षा मैंने उन व्यक्तियों से, तत् साधु मन्ये, जो मैंने अपने सदगुरुओं से सीखा है, वो बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। हालांकि हिरण्यकश्यप नहीं समझ पा रहा कि सदगुरु किसे बोल रहे हैं, किंतु अब जब शिक्षा सुनेगा तो अवाक रह जाता है। बोलते हैं सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहाता। असत अर्थात जो सत नहीं है। जितने भी व्यक्ति संसार में हैं, कैसे अजितेंद्रिय अर्थात जिनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, मन वशीभूत नहीं है, ऐसे लोगों ने असद वस्तु को सद मान करके ग्रहण कर रखा है। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या होता है, सदा समुद्विग्न, सब समय के लिए वो उद्विग्न है, सब समय के लिए। दिन रात, रात को नींद नहीं है, चिंता है, और दिन में कितनी प्रकार की परेशानियां हैं, और ऐसे जीवन भर बिना किसी रुकावट के। यदि कोई कहे नहीं कि हमें तो खुशी भी मिलती है, किंतु बोलते नहीं, कैसे बता रहे हैं। असल वस्तु से कहने का तात्पर्य मूल में इस शरीर को संबोधन किया जा रहा है, केवल पारिवारिक जीवन के लिए नहीं है। गृहबंध कूपम से केवल यह नहीं हम समझे कि हम केवल जो लोग गृहस्थी हैं, जिनके बच्चे हैं, परिवार है, उन्हीं को सब यहाँ पर प्रहलाद महाराज लक्ष्य कर रहे हैं। नहीं, ये शरीर एक अंधकूप है, ये गृह है। इस घर को जिन्होंने अपना मान लिया है कि ये शरीर मैं हूं और मुझे इसके लिए जीना है, वे सभी लोग सब समय के लिए समुद्विग्न है। 24 घंटे और कितने प्रकार की परेशानियां, इस शरीर से जनित दुख अलग है, इस शरीर को सब समय रोग व्याप्त रहता है सब समय। और उसके अलावा शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हमने अपनी बना के रखी हुई हैं, वो अपनी वस्तुएं भी हमें छोड़नी पड़ रही हैं, अभी भी और बाद में छूट भी जाएंगी। और इस शरीर से संबंध जिन लोगों के जुड़े हुए हैं वो भी हमें छोड़ देंगे। जब हमारा अपना शरीर ही छोड़ देगा तो बाकी संबंधों की तो बुनियाद की कोई बात ही नहीं रह जाती। तो ऐसे सब लोग, क्योंकि असत वस्तु को अपना मान लिया है जो सत नहीं है, इसलिए सब समय दुखी है। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज जी, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। ऐसे लोगों को चाहिए कि इस अवस्था को तुरंत त्याग करके, तुरंत मैंने से कहने से क्या तात्पर्य, जब ही पता चले, आयु की बात नहीं कही कि वृद्ध होकर के करो, नहीं, स्त्री हो पुरुष हो ऐसा कोई विचार नहीं दिखाया, जैसे ही पता चले आपको तुरंत, जैसे पैसा कमाने का मौका मिले तो हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा तब पैसा कमाऊंगा या 40 वर्ष का हो जाऊंगा तब पैसा कमाऊंगा, नहीं। शरीर संबंधी सुख को प्राप्त करने के लिए तो हम बाल्यकाल से ही तत्पर है, जन्म से ही तत्पर है। उसी प्रकार से आत्म संबंधी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उस भगवत प्रीति को प्राप्त करने के लिए, सदगुरु की शरण को प्राप्त करने के लिए, साधुओं के संघ को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर चेष्टा युक्त होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा धन है कि एक बार मिल जाने के बाद आपको जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाएगा, फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कोई कमियां नहीं रहेंगी। समस्त प्रकार से जितने भी मंगल हैं, जितने भी कोई मंगल कामना कर सकता है, इस केवल इस संसार में नहीं, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी तक को जितने सुख प्राप्त है वो सब सुख आपको बिना किसी प्रयास के अनायासी प्राप्त हो जाएंगे। कितने ही उदाहरण है, महाराज जी के कितने शिष्य हैं जो दिल्ली में बाहर में हैं, वो लोग एक भक्त हैं, वो दिल्ली में पहले IIT में पढ़ रहे थे, वहां पर उन्होंने केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल किया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-7 वर्ष पहले की बात है। और उसके दौरान भी वो निरंतर, जिन दिनों में उनके एग्जाम थे IIT के, उन दिनों में भी वो रोज 16 माला का जप, आधा घंटा गीता इत्यादि ग्रंथों का पाठ करते थे एग्जाम के दिन में भी, और फिर उनको स्कॉलरशिप मिली इसके कारण, और अमेरिका में गए, वहां पे भी उन्होंने PhD करी, उसमें भी उनको गोल्ड मेडल मिला। और उसके दौरान भी उन्होंने किसी भी ऐसा एक दिन नहीं छोड़ा जिस दिन उन्होंने गुरु जी के दिए हुए मंत्रों का जप ना किया हो, हरिनाम ना किया हो, अपने ग्रंथों का अनुशीलन ना किया हो। तो हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं संतों के द्वारा, भक्ति के इस पथ के द्वारा, जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया उसके द्वारा, जिन्होंने अपने जीवन को संतुलित कर रखा है, उनको इस जीवन में भी सुख है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विवेक सप्त में जागृत है। जिस व्यक्ति का विवेक जागृत है उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि शरीर का तो सब समय ही, ये शरीर तो मरा ही हुआ है, शरीर से संबंधित जितने वस्तुएं वो अनित्य है। जब हम आए इस संसार में कुछ तो लेकर नहीं आए, और जब मृत्यु भी होगी तो कुछ भी वस्तु साथ में नहीं जाएगी। तब ऐसी अवस्था में किस चीज का दुख, किस चीज का शोक? केवल एक चीज का, कि जिस चीज, जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए ये शरीर मिला था, क्या? भगवत प्राप्ति। जैसे अभी गुरु जी ने बताया, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। और इसमें ऐसी बुद्धि और विवेक भगवान ने दे दिया जिसके द्वारा गीता पढ़ सकते हैं, गीता समझ सकते हैं, भगवान की बातों को सुन सकते हैं। जानवर नहीं समझेगा, जानवर नहीं सुनेगा। आप गीता लेके जाए गाय के पास, क्या सुनेगी, पड़ेगी? नहीं, केवल मनुष्य के लिए।